ओम शांति। सदा निश्चिंत और हर्षित मुख रहने की कला, हर्षित मुक्ता, यह देवताई बनने का सबसे पहला दिव्य गुण है। देवता बनने के लिए हर्षित मुक्ता का गुण होगा, तभी सतयुग में एंट्री मिलेगी। तो हर्षित मुक्ता का एक गुण ऐसा है जिससे अन्य गुण अपने जीवन में आने लगते हैं। जैसे चेहरा हमारा जो व्यक्तित्व है उसकी पहचान दिलाता है, फीचर ऑफ ए फेस एंड नेचर ऑफ ए सोल इज एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ ए सोल। जो बहुत रॉयल आत्माएं होती हैं उनके चेहरे से ही पता चलता है कि ये रॉयल आत्माएं हैं। लेकिन सबसे पहले आकर्षण करने वाला गुण है हर्षित मुक्ता। दुनिया वाले कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड। जो मन में चलता है वो अपने चेहरे पर दिखाई देता है। मन अगर हमारा प्रसन्न होगा तो चेहरे पर हर्षित मुक्ता छाई रहेगी, और हमारे मन की प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार दरवाजा मन का खटखटाते रहते हैं, चिंता, भय और बोझ। ये चोर हमारी प्रसन्नता को चुराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी प्रसन्नता को गायब होने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चिंता, चिंता मणि बाप मिल गया भाई, फिर किसकी चिंता। बोझ, सारे संसार का बोझ ढोने वाला भगवान मेरा बाप बन चुका है, वो मेरा बोझ नहीं ढोएगा, वो भी खत्म हो गया। भय, सर्वशक्तिवान बाप का हाथ सदा मेरे सिर पर रहता है, वो मेरा बैकबोन सदा रहता है, भय किस चीज का। तीनों बातें खत्म हो गई और सदा हम खुश रहने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, तो चेहरा हमारा खिला हुआ रहता है। एक स्लोगन लिखो, बहुत काम का स्लोगन है। भगवान ने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया है, लेकिन चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर अगर मुस्कुराहट नहीं होगी कोई देखना नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। ये जो मुखमंडल हैं, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमारे चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कुराहट हो। वो माली एक भगवान बाबा इस रूहानी बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचने आते हैं। वो बागवान क्या चाहते हैं, मेरे बगीचे का रोही गुलाब बहुत खिला हुआ हो, केवल खिला नहीं बहुत खिला हुआ हो। भाई माली इतनी मेहनत करेगा तो चाहेगा ना। तो इसलिए हमें अपने चेहरे पर सदा रूहानी मुस्कुराहट अर्थात हर्षित मुक्ता रखनी है। चेहरे की तीन स्टेजेस होती है, न्यूट्रल चेहरा, न प्लस है न माइनस है, न्यूट्रल। माइनस चेहरा, और प्लस चेहरा। हम दाता के बच्चे हैं, कुछ तो दान करो, कुछ नहीं दो, जेब से पैसा नहीं दो, स्माइल तो दो, इतने कंजूस तो नहीं बनो। दुनिया में कहते हैं हंसना माना फंसना, हमें हंसना नहीं है लेकिन जेंटल स्माइल हमारे चेहरे पर सदा रहे। हमारे चेहरे को कोई भी जाने अनजाने देखें, उसको कुछ न कुछ प्राप्ति मिले, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, खुशी की, आनंद की। मेरे घर के सामने दर पर कोई आता है, खाली हाथ नहीं जा सकता है। जाने अनजाने कोई भी मेरे चेहरे को देखता है, वो व्यक्ति पता नहीं इस जन्म में दोबारा मिलेगा या नहीं, उसको कुछ तो मिले ना, दाता के बच्चे हैं हम। इसलिए चेहरे पर सदा हर्षित मुक्ता होनी जरूरी है। हमारा शिव साजन हम आत्माओं रूपी सजनियों को हमेशा श्रृंगार करता रहता है, दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाता रहता है। हर रोज मेरी आत्मा रूपी सजनी जो है बहुत खूबसूरत लगे, सजी सजाई हो। एक दिन क्या हुआ, दिल्ली में एक गार्डन में एक माता दागीने श्रृंगार करके सोने के, नकली सोने के डाल के घूम रही थी, वॉकिंग कर रही थी। दो चोर आए, चोरी करके चले गए चोर से, फिर देखा है नकली है। फिर दूसरे दिन आए, वो माता घूम रही थी, वॉकिंग कर रही थी, उसके खूब पिटा, तुम हमको ठग दिया। बताओ, नकली दागिने पहनना भी गुनाह है, लेकिन भगवान हमें इतने सुंदर आभूषण पहनाते हैं जो कोई चोर चोर नहीं सकता, और आत्मा की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इसलिए मन हमेशा हमारा खुश हो, और खुशी हमें कब होती है, हाँ जी, खुशी हमें प्राप्तियों से होती है। एक व्यक्ति को लॉटरी मिल गई 20 लाख की, इतना खुश इतना खुश इतना खुश, सारा दिन को खगिया मारा था, दूसरे दिन पेपर में वो चला गया, इतनी खुशी जो समा नहीं सका। तो प्राप्तियों से हमें खुशी होती है, संगम युग में हमें बहुत बाबा से प्राप्तियां होती हैं, लेकिन उन प्राप्तियों को हम भूलते हैं, इसलिए चेहरे पर खुशी नहीं रहती है, हर्षित पुकता नहीं रहती। ये ब्राह्मण जीवन की तुलना आप सारे कल्प में किसी भी जन्म से नहीं कर सकते, इतना श्रेष्ठ ये जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन में इतनी प्राप्तियां, इतनी उपलब्धियां हमें होती हैं जो किसी जन्म में नहीं होती है। लिखो 10 प्राप्तियां, अगर ये प्राप्तियां बुद्धि में होगी तो कभी खुशी गायब होगी नहीं और चेहरे से हर्षित मुक्ता खत्म ही नहीं होगी, हटेगी नहीं। पहली प्राप्ति, हम साधारण लोग थे लेकिन भगवान ने हमें करोड़ों में सिलेक्ट करके नई दुनिया के स्थापना के लिए ब्रह्मा मुख से जन्म दिया, ब्राह्मण बना दिया, ब्राह्मण चोटी बना दिया। दुनिया में जिनका ऊंचा मर्तबा होता है वो बहुत मौज में रहते हैं, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं मैं प्रेसिडेंट बनूं, प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। बाबा ने कहा सारी दुनिया चक्कर लगा के आओ, आपके जैसा ऊंचा मर्तबा किसी का नहीं है। भाई ताली भी नहीं बजा रहे, कमाल कर रहे हैं। देखने के लिए साधारण होंगे आप, लेकिन भगवान की नजरों में सबसे आगे हैं, करोड़ों में उसकी आप पर नजर गई, उसने सिलेक्ट किया। तो हमारा ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा मर्तबा है, ब्राह्मण चोटी कहलाते हैं। दूसरी बात, हम सदा नारायणी नशे में रहते हैं, ब्राह्मण अर्थात नारायणी नशे में रहने वाले लोगों को चिंता होती है कल की, पता नहीं कल क्या होगा, मेरे बच्चे की नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मेरा बिजनेस तो नहीं ठप होगा, कल की चिंता होती है। हमें कल की तो छोड़ो, कल अब की, हमारा भाग्य फिक्स हो चुका है, भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बना दिया है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, हम मस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, बेपरवाह बादशाह रहते हैं। ब्रह्मा बाबा बूढ़े थे लेकिन बाबा को इतनी खुशी होती थी, मैं कल मिचनू बनने वाला हूं, दुनिया जिसके पीछे पागल है वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं, इसलिए बाबा खुशी में खगिया मारते थे कभी कभी। तो हमें भी सदा नारायणी नशे में रहना है, मेरा भाग्य कल्प कल्प के लिए निश्चित है, भाग्य विधाता मेरा बाप है, उसने मेरा भाग्य बहुत ऊंचा बनाया है। तीसरी बात, ब्राह्मण अर्थात ईश्वरीय गोद में पलने वाले, सतयुग में हम देवताओं के गोद में पलेंगे, बाद में द्वापर युग से तो मनुष्यों के गोद में पलेंगे, लेकिन संगम युग में ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं। ईश्वर हमें हर रोज जगाता है, सुलाता है, सारे दिन भर में हमारे साथ कंपनी देता है, कितनी हमें अच्छी तरह से पालना मिलती है। हमारे जैसे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ईश्वरीय गोद में पलने वाले हैं। हीरे तुल्य जीवन इसलिए कहते हैं, सोना उसके पीछे फीका है। चौथी बात, ब्राह्मण अर्थात हर रोज ब्रह्मा भोजन पेट भर के खाने वाले, बताओ भी थाली भी नहीं बज रही। लोग दुनिया में भोग लगाते हैं और मंदिर से थोड़ा सा प्रसाद खाते हैं, हम तो ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवताएं तरसते हैं, वो ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग लगा के पेट भर के हर रोज खाते हैं। कितने भाग्यशाली है हम बताओ। एकांत में बैठकर अगर जो प्राप्तियां हो गई उसकी गिनती करते रहेंगे तो आप खुशी में झूमते रहेंगे, इतनी मस्ती आपको होगी कि बात मत पूछो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है। कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। हमें कौन मिला है? सारा संसार जिसके मुट्ठी में है, सारा संसार जिसके इशारे पर चल रहा है, इतनी बड़ी सर्वोच्च सत्ता की हमें प्राप्ति हो चुकी है। हम साधारण लोग नहीं हैं, अल्लाह लोग हैं, है ना? पांचवी प्राप्ति, ब्राह्मण अर्थात ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, हर रोज ज्ञान सागर की लहरों में लहराते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं, और जो ज्ञान सागर में स्नान करने से ज्ञान रत्न मिलते हैं, सारे दिन भर में ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं। लोग तो कौड़ियों से खेलते रहते हैं, पैसों से खेलेंगे, दूसरी बातों से खेलेंगे, हम तो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, अमूल्य ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। और जितने जितने ज्ञान के रहस्य समझते हैं उतना और मौजों का जीवन अनुभव करने लगते हैं। और ज्ञान रत्न जितना दान करते जाते हैं उतनी और खुशी होती है। सोचो आपने जिसको ज्ञान में लाया वो कहता है इस बहन ने या इस भाई ने मुझे ज्ञान में लाया, कितनी खुशी होती है उसको, जिंदगी भर नहीं भूलता है। तो ज्ञान रत्न बांटने से अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। तो ज्ञान रत्नों से ही खेलते हैं। जब भी आपस में मिलते हैं, मुरली में आज बाबा ने क्या कहा है, आज बाबा की मुरली में क्या लहर थी, ब्राह्मणों से मिलते हैं, मोबाइल पर मिलेंगे, फोन पर मिलेंगे, तो बातें करेंगे ज्ञान की। कितने भाग्यशाली है। छठवी प्राप्ति है, ब्राह्मण अर्थात हर कदम में अनेक पद्मों की प्राप्ति कराने वाले। दुनिया में जो धनवान होते हैं, अखबार में आता है फलाने की एक दिन की कमाई इतने अरब डॉलर हैं, एक दिन की कमाई इतने खरब डॉलर हैं, एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, केवल बाबा के बच्चे ही हैं, केवल बाबा के ही बच्चे हैं। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई, बापरे बापरे, बेहिसाब कमाई। सतयुग त्रेता युग में आप देखो ना, कितने माला माल रहते हैं, कितने खजानों से प्राप्त भरपूर रहते हैं। कौन देता है, कब देता है, किसने देता है, कैसे देता है, पूछो अपने से। जो संगम युग में बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, वो हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करके अपने को माला माल करते रहते हैं। इसमें हमें लोभी बनना है, लालची बनना है। ये साथ में आने वाली कमाई है, ये अविनाशी कमाई है, अनेक जन्म हमारे साथ चलने वाली कमाई है। ये बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हर पल हर घड़ी मुझे याद करेंगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती रहेगी। लेकिन कमाई जो शब्द है, कमाई इधर बाबा कहते खूब कमाई करो, और का आगे है माई। ये माई जो है ना, माया, माया को भी कहता जाओ, इसको कमाई करने नहीं देना। तुम्हारा काम है विघ्न डालते रहना उसके कमाई में। मेरे पास सतयुग में इतनी तो सीट है ही नहीं, आठ है, 108 है, 16,000 108 है, किसको किसको मैं बिठाऊं सीट पर। इसलिए नंबर बनने के लिए बाबा माया को भेजते हैं, तुम्हारा काम है विघ्न डालना कमाई में। माया कितना भी विघ्न डाले, हमने कमाई अविनाशी करना है और खुद को माला माल करना है ना। सातवीं बात, ब्राह्मण अर्थात भगवान से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले। सारा कल्प तो हम आत्माओं के साथ में, देवताओं के साथ संबंधों की अनुभूति करते रहेंगे, और संगम युग में डायरेक्ट भगवान हमें कंपनी दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं कि मुझे अलग अलग विभिन्न संबंधों के रूप में अनुभव करते रहो, 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हो। बताओ भाई, भगवान जी हमें इतनी कंपनी देने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, मोदी जी मैं आपके दिन आपके घर में सारा दिन रहूंगा, आपको कंपनी दूंगा, आप खुशी में झूमते रहेंगे। ये तो केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ये तो तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, और वो हमें 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार है। बापरे बापरे, मौका छोड़ना चाहिए भाई। हाँ जी, क्या बोला? होशियार, हमें इसमें होशियार बनना है। होशियार अर्थात मौके पर चौका मारने वाला, मौका छोड़ने वाला नहीं, उसको कहते हैं होशियार। तो भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहें, सारा दिन भर में विभिन्न रूप से उनको याद करते रहें। बिंदु बनकर बिंदु याद करते हैं तो 2-4 घंटे के बाद में बोर होता है। भगवान की याद हमें बोर होए ऐसा नहीं हो सकता है, उसमें और रुचि बढ़ती रहे। इसलिए वैरायटी संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करते रहना, फ्री हमने छोड़ना नहीं। कुछ काम नहीं है, बैठा रहो बाबा, बस मुझे देखते रहो और कुछ नहीं करना है, देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो। कितना मजा आता है देखो, आपका मित्र अमेरिका से 15 साल के बाद आता है, केवल आपके बाजू में बैठता है, आपको देखता है, आपको रिलैक्स अनुभव होता है, खुशी अनुभव, मेरा दोस्त 15 साल के बाद आए, और ये मेरा दोस्त 5,000 साल के बाद आया है और हमें कंपनी ऑफर कर रहा है ना। एक एक पल बाबा के साथ अनुभव करना, संगम माना ही भगवान के संग में रहने का युग। सारा कल्प तो आत्माओं के साथ रहे और रहेंगे सतयुग से, वही काम करना है। लेकिन ये जो संगम युग है, इसमें हमें भगवान के संग में जास्ती से जास्ती रहना है। कितने संबंध अनुभव करेंगे भाई? हाँ जी बोलो ना, मणिनगर वाले मेमनगर वाले बोलो। हाँ, सर्व संबंध तो करने हैं, लेकिन कितने हैं? कुछ तो होंगे ना नंबर, वो तो प्राप्त संबंध, सर्व संबंधों का शक्रीन है, सर्व प्राप्तियों का भंडार है। हाँ जी, विदेशों में आप जाएंगे ना, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं, एकड़ों में, कई एकड़ों में एक ही जगह, छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज एक ही जगह मिलती है। भारत में अगर 10 चीजें खरीदने तो 10 दुकानों पर धक्का खाना पड़ता है, कितना टाइम और कितनी एनर्जी खर्च होती है। अभी मेरा शॉपिंग सेंटर केवल बाबा है, बस बाबा है, और कहीं मुझे बुद्धि को भटकाना ही नहीं है। द्वापर युग से हमने बुद्धि को बहुत भटकाया, अभी बुद्धि पर थोड़ा रहम करना है। एक ही ठिकाने पर ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को लगा दो और सर्व प्राप्तियां बाबा से लेते रहो, खुद को माला माल करते रहो। सागर मिला है, खजानों का सागर मिला है। सागर ये नहीं कहता है लोटा पानी ले लो या बाल्टी ले लो, भाई पाइपलाइन लगा दो ना, जितना मर्जी लूटो ना। कनेक्शन माना कलेक्शन। जैसे बाबा से कनेक्शन जोड़ता है, किसी भी संबंध के रूप में शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। तो कम से कम 11 संबंध बाबा के साथ हमने अनुभव करना है, सवेरे से रात्रि तक, फिर नहीं जोड़ना है। आंख खुलती है बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संबंध बाप के रूप में अनुभव करना है। बाबा मेरा बाप है, लौकिक बाप हमें पालना देता है, स्वार्थ से देता है, यही बाप ऐसा है जो निस्वार्थ पालना देता है और इतना हिसाब अपना बड़ा वर्षा हमें देता है जो कोई नहीं दे सकता है। 21 जन्मों की बादशाही का वर्षा देता है। जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं, दूसरा संबंध अनुभव करो, बाबा मेरा टीचर है, भगवान टीचर बनेगा, साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे सेंटर से बाहर जाते हैं तो बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव करो, बाबा की दृष्टि से अनेक वरदान लेते रहो और बाबा का वरदानी हाथ जो है अपने माथे पर अनुभव करो और सारे दिन भर में बाबा की छत्र छाया में ही चलते रहो और वरदानी मूरत बनते रहो। हम सभी वरदानों से पलने वाली आत्माएं, मेहनत द्वापर से बहुत मेहनत किया, थोड़ी थोड़ी प्राप्तियों के लिए, थोड़ी शांति थोड़ी शक्ति के लिए कितनी मेहनत किया, बाबा हमें मेहनत से छुड़ाने आए हैं वरदानों से पालना देने के लिए। फिर चौथा संबंध, भाई आप अहमदाबाद से आए, आप खास बच्चे हैं या आम बच्चे हैं बताइए? सभी खास बच्चे हैं, आम कोई नहीं है। बाप रे बाप, सभी खास बच्चे। खास बच्चे किसको कहते हैं? खास उल्टा क्या है? सखा, जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करता है वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने दिल का राज जो है सबसे छिपा लेते हैं, जहां सखा मिल जाता है सारा राज खोल देते हैं, बता देते हैं। तो भगवान मेरा सखा है, उनके साथ में बैठो, खाओ, खेलो, नाचो, गाओ, राज करो, जो करना है भगवान के साथ दोस्त के रूप में, सखा के रूप में अनुभव करो, क्योंकि ये दोस्त ही मुझे अंतिम समय मदद करने वाला है। लौकिक अलौकिक सब किनारे होने वाले हैं। जब मैं मुसीबत में रहूंगा तो मेरा दोस्त नंगे पैर भागा भागा आएगा और मुझे मदद करने के लिए दौड़ेगा। इसलिए मेरी जो दोस्ती उसके साथ हुई है, कौन सी? पवित्रता की दोस्ती, उसको मुझे बखूबी निभाना है। फिर चौथा संबंध हो गया सखा का, पांचवा बेटे का, छठवा मां का, सातवा साजन मेरा बाप है, आठवा बाबा मेरा गाइड है, नौवा बाबा मेरा सर्जन है, दसवा बाबा मेरा रक्षक है और ग्यारहवा बाबा धर्मराज भी है। कोई अगर हम छोटी मोटी गलती करेंगे तो बाबा हमें सजा भी देंगे। सातवीं बात है प्राप्तियों में, आठवीं बात है ब्राह्मण अर्थात सदा सैर करने वाले। जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका सैर करने का समय फिक्स होता है, सैर करके हमेशा अपने को फ्रेश अनुभव करते हैं। तो हमें भी बाबा ने बुद्धि रूपी मान दिया है और तीनों लोगों की सैर करने का परमिशन भी दिया है। जब चाहो जिस दुनिया में जाना चाहे जाओ, सैर करते रहो, क्योंकि हम भी बड़े VIP बाबा के बच्चे हैं, कोई भी साधारण बच्चा नहीं है। तीनों लोगों की जब चाहे सैर करने वाले। नेक्स्ट है आठवीं प्राप्ति, नवी प्राप्ति ब्राह्मण अर्थात हमेशा सेवा का मेवा खाने वाले। भगवान ने हमें ये बेहद रुद्र ज्ञान यज्ञ में सेवा करने का मोक्ष चांस दिया है। इस बेहद यज्ञ में तन मन से धन से स्वाहा होते हैं और जितना चाहे भाग्य बना सकते हैं, सेवा का मेवा खा सकते हैं, खुशी के रूप में, दुआओं के रूप में, शक्तियों के रूप में सेवा का मेवा हम खाते रहते हैं। रसीवाद है ब्राह्मण अर्थात साक्षी दृष्टा बनकर इस बेहद ड्रामा के हर सीन का आनंद लेने वाले। भगवान ने ये ड्रामा बनाया है, जिसका कंट्रोलर डायरेक्टर स्वयं भगवान है, वो कितना ड्रामा सुंदर होगा। लेकिन उसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित होते हैं, तब इस ड्रामा के हर सीन का आनंद हम लेने लगते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इतनी सारी प्राप्तियां हमें होती हैं, तो हमारे चेहरे पर वो खुशी के रूप में, हर्षित मुक्ता के रूप में झलकनी चाहिए। लेकिन झलकती क्यों नहीं है? क्योंकि प्राप्तियों को हम भूले रहते हैं। छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बच्चा किसी फैक्ट्री में सर्विस करता है, 25-30 उम्र हो गए उसके, फिर रात को सोता है, अपना कपड़ा निकाल के खुटी पर टांगता है, और रात को मम्मी क्या करती है, 50,000 का बंडल और एक लाख का चेक बना के उसके नाम का जेब में डाल देती है। वो बच्चा वो ड्रेस पहनकर चलता है, स्कूटी पर जाता है, फैक्ट्री में स्कूटी पर बैठकर जाता है, 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, चेहरा सीधा साधारण है। जैसे 5 किलोमीटर होता है कि ये जेब इतना खाली किस, इतना भारी कैसा है, इतना देखता है 50,000 और 1 लाख का चेक, बाप रे, चेहरा बदल गया। वो 50,000 1 लाख उसके जेब में था, 5 किलोमीटर चलता रहा, चेहरे पर नहीं था। जैसे उसको उसकी स्मृति आई, उसने देखा, चेहरा बदल गया। तो कहने का भाव है ईश्वरीय प्राप्तियां हमें हो चुकी है, हो रही हैं, लेकिन उनकी विस्मृति होने के कारण हमारे चेहरा पर वो दिखाई नहीं देती हैं। अगर उनकी स्मृति सदा रहती है तो चेहरा हरा भरा चेहरा रहेगा, केवल हर्षित मुक्ता नहीं लेकिन बाबा जो भी 36 गुणों की लिस्ट बताते हैं, वो गुण हमारे चेहरे पर छाए हुए होंगे, धारण किए हुए होंगे, आध्यात्मिकता की हरियाली हमारे चेहरे पर अनुभव होगी, ठीक है ना। अभी निश्चिंत रहना, विजय मेरी निश्चित है, जो भी मैंने कर्म करना है, भगवान ने बचपन में ही जन्मते ही मुझे विजय का तिलक लगाया है और विजयी भव का वरदान दिया है, बच्चे विजयी भव, और जिसका साथ भगवान होता है उसको विजय न मिले ये हो नहीं सकता है। तो विजयी, मैं विजयी आत्मा हूं, इस निश्चय में रहते हैं, कलप कलप की मैं विजयी आत्मा हूं, तो हमेशा निश्चिंत रहते हैं। निश्चय के आधार से निश्चित विजय है, और विजय निश्चित है तो वो निश्चिंत रहते हैं। इसलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनवनी हो। कोई भी अच्छी बात आती है या न अच्छी बात आती है, थोड़ा हम डिस्टर्ब होते हैं, व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है, निश्चिंत हम नहीं रहते, चिंता लगी रहती है। ये ड्रामा केवल रिपीटेशन है, केवल और केवल रिपीटेशन है, ओनली एंड ओनली रिपीटेशन, नथिंग न्यू। हम यहां ऐसे बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं, अनगिनत बार बैठे थे इसलिए बैठे, और अनगिनत बार बैठते रहेंगे भाई, बैठते रहेंगे। कितने खुश नसीब है, इसलिए कहते हैं भूत का जिक्र ना करो, भविष्य जो है ना, भूत का जिक्र ना करो, भविष्य का फिक्र न करो और वर्तमान का फक्र करो, नशा गर्व करो। वर्तमान भगवान ने मुझे ये भाग्य बनाने के लिए समय दिया है। दुनिया वाले दुखी चिंता क्यों रहते हैं चिंतित, क्योंकि हमेशा भूत और भविष्य में रहते हैं और हम वर्तमान में रहते हैं, इसलिए हमेशा मस्त रहते हैं। भगवान ने मुझे ये समय दिया है भाग्य बनाने का, भाग्य विधाता ने मुझे भाग्य बनाने की कलम ही दे दी मेरे हाथ में, लो जैसे चाहे कलम अपनी तस्वीर बनाओ। बताओ भाई, जितनी लंबी तकदीर की तस्वीर बनाना है, खींचना है लाइन, खींचते रहो, कितने भाग्यशाली है। तो इसलिए ड्रामा में अच्छा चीन है मेरे अच्छे कर्मों का फल है पास्ट के, ना अच्छा है मेरे पिछले ना अच्छे कर्मों का फल है। दोनों को मुझे स्वीकार करना है और दोनों में मुझे सदा निश्चिंत रहना है। अगर मेरा किसी दर्श को देखकर क्या क्यों ऐसे वैसे प्रश्न उठता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा मुझे क्यों बोला, मतलब ड्रामा का राज मैंने नहीं समझा, अभी तक नहीं समझा। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा हूं, चल रही हूं, लेकिन ड्रामा का राज अभी तक मैंने समझा ही नहीं। ड्रामा का राज समझना अर्थात हमेशा निश्चिंत बेपरवाह बादशाह की तरह रहना। और जब हमारा मन बहुत खुश रहता है और निश्चिंत रहता है, तब हमारा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहता है और बहुत अच्छी तरह से योगाभ्यास में हम आगे बढ़ते हैं और उन्नति ही उन्नति करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने वरदान में हमें कहा है कि सदा हर्षित और निश्चिंत रहने वाले विजय मेरी निश्चित है ऐसा अनुभव करने वाले मेरे विजयी बच्चे। ठीक है, तो हमेशा एक प्रण लेना है, यहां से आपको संकल्प लेना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैंने खुशी को नहीं छोड़ना है, हर्षित मुक्ता मेरे चेहरे से गायब ना हो। मेरी स्थिति कोई इतनी साधारण नहीं है, मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूं। कोई मेरी स्तुति करे तो आसमान में उड़ रहा हूं और कोई मेरी ग्लानि करे तो धरती पर पटक रहा हूं। मैं इतना साधारण खिलौना नहीं हूं किसी के हाथ का, मेरी स्थिति अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे हर परिस्थिति में सदा मस्त रहना है, हर्षित मुख रहना है और निश्चिंत रहना है। ओम शांति। अभी हमने 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करना है जो आप भूल नहीं सकोगे। एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, एक तरफ आजाद पंछी बन के बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक, भ्रुकुटि के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक। पवित्र स्वरूप पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज। मौज आत्मा ने धारण किया है। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं। जो अपने सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान ने मेरे भाग्य को जगा दिया है। भाग्य विधाता हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते ही रहते हैं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूं। इस विश्व के गोले से पार बादलों से भी पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोर निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भुकटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मौज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्ति स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल। दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंट होम। मेरे प्राणों से भी प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिवपिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। खजानों के सागर शिव पिता से खजाने लूट रही हूँ और लुटा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ, आ रही हूँ। और पुनः इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुके हूँ। मज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति।